आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 22वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। कृष्ण द्वारा गोपियों का चिरहरण, इसका अनुवाद इस प्रकार से है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हेमंत ऋतु के पहले मास में गोकुल की अविवाहित लड़कियों ने कात्यायनी देवी का पूजा व्रत रखा। पूरे मास उन्होंने बिना किसी मसाले की खिचड़ी खाई। हरे कृष्णा। सो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हेमंते शब्द मार्गशीर्ष मास का सूचक है, जो पाश्चात्य कैलेंडर के अनुसार लगभग मध्य नवंबर में नवंबर से मध्य दिसंबर तक का समय है। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण इस नाम के ग्रंथ में भाग एक अध्याय 22 में ऐसा टिप्पणी की है कि सर्वप्रथम गोपियों ने हविष्यान्न खाया। यह हविष्यान्न एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मूंग की दाल तथा चावल को एक साथ पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें हल्दी या कोई मसाला नहीं डाला जाता। वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह का भोजन किसी अनुष्ठान करने के पहले शरीर की शुद्धि के हेतु पाया जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये लेक्चर जो है वो इमरजेंसी लेक्चर है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे श्यामानंद प्रभु के नाते हुए मुझे यहाँ बिठाया गया है, तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत का ये नया अध्याय, सुंदर अध्याय शुरू हो रहा है। इस कथा का जो स्टेज है वो यमुना किनारा है, श्री वृंदावन धाम का यमुना किनारा, जिसका वर्णन आचार्यों ने किया है। वैसी जगह है जहाँ पर श्री यमुना जी अपने सुंदर शीतल मंद जल से बहती है, प्रेम की लहरों से उछलती है, उसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिलते हैं। उन कमलों के फूल के बीच में राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं। उन कमलों के अंदर अलग अलग कमल में बहुत सुंदर आकार में गोपियां खड़ी रहती हैं और भगवान की सेवा करती हैं। बीच वाले सिंहासन में रत्न सिंहासन है, बीच वाले कमल में रत्न सिंहासन है जहाँ पर राधा और कृष्ण विराजमान रहते हैं। ऐसी सुंदर यमुना अरविंद बंधु नंदिनी, कालिंद नंदिनी श्री वृंदावन को पावन करने के लिए, स्वयं पापुनीत होने के लिए, वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए वृंदावन में बहती है। और यह यमुना के सुंदर किनारे पर श्री वृंदावन में श्री ब्रज मंडल में भगवान ने अनंत लीलाएँ की, तो उसमें से एक लीला जो है यहाँ पर आरंभ हो रही है। इस कथा का इतिहास ऐसा है कि सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुना रहे हैं और हो सकता है कि ये उनकी कथा का छठवां दिन हो, क्योंकि अभी दशम स्कंद में कथा चल रही है, कृष्ण चरित्र का वर्णन हो रहा है संक्षेप में, और 11वां 12वां स्कंद के बाद 7 दिन पूरे होने वाले हैं, तो हो सकता है कि छठे दिन में ये कथा होगी। 5 दिन तक सुखदेव जी कथा कर रहे हैं अविरत दिन और रात, और वहाँ पर कोई टी ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, रिफ्रेशमेंट ब्रेक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ी ही एक तरह से एक स्तर पे तपस्या के साथ और एक स्तर पे बड़े आनंद के, दिव्य आनंद के अनुभव के साथ ये कथा हो रही है, इसकी ये विशेषता है। हमारे लिए हम सोचते हैं तो ये लगता है कि बहुत कष्ट की बात है, कोई नींद नहीं है, कोई बीच में भोजन नहीं है, शरीर की क्या अवस्था होगी, यहाँ तक कि मलमूत्र विसर्जन करने के लिए भी वहाँ पर कोई समय नहीं था और ना कोई गए। इनका मतलब वो सारे लोग दिव्य स्तर पर, आत्मा के स्तर पर ये कथा सुन रहे थे और मानो शरीर के बंधन से वो मुक्त से ही हो गए थे। तो ऐसे प्रसंग में सुखदेव जी ने दशम स्कंद का आरंभ किया तो परीक्षित महाराज ने ऐसा अनुभव उनको दिया कि उनको अति आनंद हो रहा है और कष्ट और पीड़ा और थकान के कोई लेवलेस भी नहीं उनके अंदर, और ये देखकर सुखदेव जी और प्रभावित होते हैं और उत्साहित होते हैं और उनको बार बार अभिनंदन करते हैं, परीक्षित जी आप बड़े महान श्रोता हो, क्योंकि आपका इतना उत्साह है सुनने के लिए, इतनी अवस्था होने पर भी आप इतने उत्सुक हैं सुनने के लिए, तो उनको और प्रेरणा प्राप्त होती है और उत्साह से बोलने लगते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का आदान प्रदान होता है, श्रीमद् भागवत का वक्ता उत्साही है और श्रोता भी उत्साही है, तो भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होता है। पहले भगवान की कृपा से दिव्य ध्यान, दिव्य ज्ञान जो है, अनुभूतियाँ जो है वो वक्ता के मुँह से प्रकट होने लगती। वक्ता बहुत तैयारी करके आया है तो अच्छा कथा होती है, ऐसा नहीं है, कथा की तैयारी करना ये वक्ता के लिए एक ज़रूरत है, तपस्या है या नियम है उसका, लेकिन कथा में वही प्रकट होता है जो भगवान चाहते हैं, किसके अनुसार चाहते हैं, जो श्रोता का, श्रोताओं का मंतव्य है, श्रोताओं की जिजिगिषा है कि उनको क्या सुनना है, क्या उनकी उत्सुकता है सुनने की, उसके अनुसार वक्ता के मुँह से भगवान की कृपा बहती है। और यहाँ पर ऐसा पात्र श्रोता है सुखदेव जी के सामने परीक्षित महाराज, कि जो शरीर का सारा बंधन भूलकर स्वेच्छा से और आनंद से और उत्सुकता से सुखदेव जी को उत्साह दे रहे हैं, ये बहुत ही आदर्श स्थिति है। और ऐसे ही आदर्श स्थिति में दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और हमारा ऐसा भाग्य है कि हमारे जितने शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में ऐसा एक श्रेष्ठ वक्ता, प्रामाणिक वक्ता और ऐसा श्रेष्ठ उत्सुक श्रोता, इन दोनों के बीच का संवाद अलग अलग उपनिषदों द्वारा, अलग अलग पुराणों के द्वारा, अलग अलग भगवद गीता भी ऐसा ही एक शास्त्र है, सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ श्रोता, श्रोता की क्वालिफिकेशन उत्सुकता। तो इसलिए इतने थकान में अभी जो कथा अगर कर रहे हैं, जैसे अभी वृंदावन में कथा होती है, अमृतसर में होती है, दिल्ली में होती है, बद्रीनाथ में भी होती है, तो कथाकार देखते हैं कि अभी कथा सुनने वाले सब सो रहे हैं तो फिर वो कथा वाइंड अप करने लगते हैं, जल्दी 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 भगाते हैं उसको, सुबह के समय फ्रेश रहते हैं तो ज़रा अच्छी तरह से बोलते हैं, दोपहर के टाइम पे फिर फटाफट आगे जाते हैं, क्योंकि उनको भी क्या करेंगे, सब सो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, जितनी कथा आगे बढ़ती जा रही है उतना उत्साह बढ़ते जा रहा है, उतना प्रमोद बढ़ते जा रहा है। तो ये कथा का थोड़ा सा इतिहास ऐसा है कि जब प्रभु रामचंद्र मिथिला में गए थे विश्वामित्र मुनि के साथ अपने भाई लक्ष्मण को लेकर, और वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हुआ था और सीता जी के साथ उनका विवाह भी हुआ था, तो उस समय जब वो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, हजारों कोटि कंपनियों का कंदर्प यानी कामदेव का सौंदर्य लेकर प्रभु रामचंद्र युवावस्था में जब वहाँ पर विहार कर रहे थे, तो सीता देवी नहीं लेकिन मिथिला की सारी युवतियाँ उनसे आकर्षित हो गई। उन्होंने एकांत में प्रभु रामचंद्र से ये मंतव्य प्रकट किया कि हमें भी आपके साथ में माधुरी रस में आदान प्रदान और लीला करने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा इस अवतार में तो मैं एक पत्नी व्रता हूँ, मैं इस अवतार में आपकी इच्छा नहीं पूरी कर सकता, लेकिन अगले अवतार में जब मैं आऊँगा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, तब आप सभीों को मैं संतुष्ट करूँगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। तो नौ नंदों के घर में ये सारी जो गोपियाँ, मिथिला रूपा गोपियाँ कहते हैं उसको, मिथिला रूपा गोपियाँ, नौ नंदों के रूप में, नौ घर में, ब्रज में उनका जन्म हुआ। और उन्होंने नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया के घर में एकदम छोटा मोटा काम करने की सेवा स्वीकार कर ली। अपने घर से आते थे और नंद बाबा के घर में यशोदा माता जी के निर्देश में भगवान की सेवा में छोटी मोटी सेवाएं करते थे, व्हाट यू कॉल इट, मिनियल सर्विस, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं, छोटी छोटी जो भी जरूरत है, डू द नीडफुल, फिल इन द गैप्स, ऐसा काम करते थे। और वो काम करते करते, सेवा करते करते नंदन नंदन के सुंदर रूप को देख के बड़ी आकर्षित हुआ करती थी, उनका हृदय उनके दर्शन से बहुत ही आनंदित, उल्लसित और आकर्षित हुआ करता था। और ये रोज का ध्यान था उनका, मेडिटेशन, रोज सेवा के लिए जाना और श्री नंदन नंदन के सुंदर, श्याम सुंदर के स्वरूप को देखना, उनको निहारना, नेत्रों को अनंत आनंद प्राप्त करना और हृदय की उत्सुकता रोज बढ़ाना, रोज बढ़ाना और रोज बढ़ाना। तो ये अलग अलग सबके पृथक पृथक हृदय में ये भावना बढ़ रही थी। तो एक दिन ये सारी गोपियाँ एकत्रित हुई यमुना किनारे और बैठ के अपने हृदय का जो भाव है उसको प्रकट करने लगी। और जब उन्होंने देखा कि यही भाव सभीयों के मन में है, ये विशिष्ट ग्रुप था, वैसे ब्रज में गोपियों का बहुत 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 वर्गीकरण है, बहुत ग्रुप्स हैं, मिथिला वासिनी है, अयोध्या वासिनी है, दंडकारण ऋषिचारी है, श्रुतिचारी है, मत्स्य रूपा है, वराह रूपा है, ऐसे अनंत गोपियों का झुंड है। उसमें से एक गोपियों का ये ग्रुप जो है वो यमुना किनारे आके में बैठते हैं और अपने हृदय का भाव प्रकट करने लगते हैं। और उस समय उनको सबको ये अनुभूति होती है कि केवल मेरे हृदय में नहीं है, सभी गोपियों के हृदय में यही भाव है। तो फिर वो डिस्कस कर रही थी इस प्रकार से, तो वहाँ से वृंदा देवी आती है और वृंदा देवी आती है तो वृंदा देवी के चरणों में सब गिर जाती है, वंदन करती है उनको, बोला आप तो श्रेष्ठ गोपी हैं, भगवान की बड़ी प्रियतमा हैं, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हमें हमारे प्रियतम हृदय के सम्राट जो भगवान कृष्ण हैं, श्याम सुंदर जी, इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सबकी ये अभिलाषा है। अभी वो अपनी लाज भी छोड़कर हृदय का अंदर की जो बात है वो एकदम खुलेआम बोल रही है। वैसे कोई लड़की ऐसे खुलेआम बोलती नहीं, जो सुसंस्कृत घर से है वैसे कहती नहीं कि मुझे उससे विवाह करना है ऐसे नहीं बोलती, लेकिन ये एकांत में अपनी ही भावना वाले सभी गोपियों के संघ में वृंदा देवी के सामने हृदय के अंदर की बात जो है एकांत में प्रकट कर रहे हैं। तो वृंदा देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उनको कहती है कि मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगी जो व्रत करने से आप श्री कृष्ण को पति के रूप में पाओगे। तो वृंदा देवी वही यमुना किनारे सभी गोपियों के कान में अनेक मंत्रों का उच्चारण करती है और सारी विधि का वर्णन करती है। वो कहती है आपको एक महीना ये व्रत करना होगा, कार्तिक महीने के अंत होने के बाद 30 दिन के लिए आपको ये व्रत करना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे उपवास करना है, कैसे फूलों की माला बनानी है, कैसे पूजा करनी है, ऐसे वर्णन करते हैं। और गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, गर्ग संहिता, इसमें ये सुंदर वर्णन आया है कि सभी गोपियाँ हर रोज भोर के समय पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना जी की ओर जाया करती थी, क्योंकि नंद बाबा का घर थोड़ा दूर है और वहाँ से सुबह सुबह सूरज ढलने उगने के बहुत ही पहले भोर के समय हाथों के एक में के दूसरों के हाथ पकड़कर भगवान के गुणगान के गीत गाते हुए वो यमुना जी में पहुँचती थी। और वहाँ पर वालू का जो सैंड है उसकी देवी की मूर्ति बनाती थी। सभी हर एक गोपी अपनी अपनी, हर एक गोपी अपने अपने घर से प्रसाद पूजा की थाली, भोग अर्पण, फूल सब कुछ लेके, व्यंजन लेकर वहाँ जाती थी। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि वो हविष्य अन्न भोजन करती थी उस समय। हविष्य का मतलब होता है मूंग दाल की खिचड़ी, लेकिन उस खिचड़ी के अंदर ना नमक है, ना हल्दी है, ना कोई मसाला है और कुछ नहीं है, केवल चावल और मूंग की दाल को पकाना है बस, और इतना ही उसको प्राप्त करना है। और शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, खास करके कर्मकांड सेक्शन में, कि ये जब अन्न कोई व्यक्ति खाता है तो उसका शरीर और मन शुद्ध हो जाता है और वो किसी भी प्रकार के पवित्र कार्य पवित्र विधि करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब ही गेट्स रेडी इट्स अ प्रिपरेशन। ये अन्न खाने से मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और फिर वो पूजा की भावना जो है वो सही रूप से प्रकट हो जाती है। तो गोपियों ने गीत गाकर रोज वहाँ पर प्रवेश किया और जमुना किनारे बैठकर वालुका की कात्यायनी देवी, जो दुर्गा देवी का एक स्वरूप है, कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर रोज उनको वो भोग अर्पण करती थी। बड़े बड़े सुंदर सुंदर भोग मालाएं बनाकर अर्पण करती थी और मंत्र उच्चारण करके दिन भर उपवास करती थी। बिल्कुल निराहार रहकर दिन भर चिंतन और ध्यान और पूजा प्रार्थना में लगते हुए वो कात्यायनी देवी को आराधना करती थी कि हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। और 30 दिन के व्रत के बाद, आप जानते हैं जो ये मार्च जो है मार्गशीर्ष मास, ये हेमंत ऋतु की शुरुआत है, मतलब सर्दियों की शुरुआत है। और जब यह मंथ आगे बढ़ता है तो सर्दी भी बढ़ जाती है। तो 30 दिन के बाद जब ये व्रत समाप्त होने का समय आया तो वो पूर्णिमा का दिन था, यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को व्रत शुरू हुआ, फिर कार्तिक अमावस्या, फिर मार्गशीर्ष का प्रथम पक्ष समाप्त हुआ, फिर प्रथम पक्ष समाप्त होने के बाद पूर्णिमा आई। तो वो पूर्णिमा का दिन उनका व्रत समाप्त हो चुका था। उस दिन भी वो भोर के समय निकली और व्रत समाप्ति के आनंद में सब लोग जमुना जी में प्रवेश किया अपने वस्त्रों को उतार कर। और जमुना जी में उस दिन वो, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम हो गए तो कैसे फ्री हो जाते हैं हम लोग, क्या करें और क्या नहीं ऐसा लगता है उसको खुशी से। तो वैसे अपना एक सुंदर व्रत की समाप्ति हुई, इस आनंद में सब लोग जमुना नदी में उतरते हैं निर्वस्त्र होकर और एक दूसरे पर जमुना जी के शीतल मुलायम कोमल जल के छींटे एक दूसरे पर बड़े प्रेम से उसको उड़ा रहे थे और हास फरियास संवाद हो रहा था उस समय। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, क्योंकि बरसाने में जब ही राधा रानी का विवाह का निश्चित हो रहा था उस समय वो सब लोग जाते हैं उधर पूर्णमासी के पास और उनको कहते हैं आप तो हमारे गुरु हैं, हमारी भविष्यवेत्ता भी हैं, हमारा कुंडली भी आप देखते हैं, सब प्रोग्राम आपके ही सैंक्शन से शुरू होते हैं, तो अभी आप इनकी कुंडली देखिए, कौन सा मुहूर्त है देखिए, जल्दी विवाह कर दीजिए। लेकिन पूर्णमासी माता जी जो भी दुर्गा देवी का अवतार है वो कहते हैं कि सोचते हैं मन में कि तो ब्रज का भाव तो परकीय भाव है, ये परकीय भाव को कैसे भंग किया जाए, विवाह होगा तो सब स्वकीय हो जाएगा, ऑफिशियल हो जाएगा, उनके घर में दुल्हन बन के चली जाएगी राधा रानी, फिर वो चुप चुप के मिलना, वो कोकिला बन के मिलना, वो संकेत करना, फिर वो अलग अलग वनों में जाकर अलग अलग संवाद होना चुप चुप कर, तो कैसे होगा। इसलिए वो कहते हैं कि अभी ये जो स्टार्स हैं सब गलत जगह बैठे हुए, अभी अगर विवाह होगा तो संपन्न नहीं होगा, यशस्वी नहीं होगा, तो इसको आप अभी कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर देते हैं। तो सभी गोपियाँ व्याकुल हो गई थी उस समय राधा रानी के साथ, क्योंकि सभी गोपियों के मन में भी यही विचार था और ये सब कृष्ण भगवान जानते थे कि ये सब मुझे पति बनकर उनकी संग लेना चाहती हैं और ये व्रत भी कर रही हैं। रोज़ वो देखते थे गोपियाँ ध्यान लगा कर बैठी हैं, एक ही मंतव्य है उनका, भले वो देवी का भजन कर रहे हैं जो शास्त्र में निषिद्ध माना गया है, लेकिन ये ऐसा देवियों का और देवताओं का भजन है जो शास्त्र में मान्यता प्राप्त है कि अगर आपके मन में केवल कृष्ण की सेवा है और कृष्ण का चिंतन है और कृष्ण की सेवा की प्राप्ति की अभिलाषा है तो ये व्रत जो है वो जायज़ है। तो उस व्रत के अंत में गोपियों के प्रेम से भरे हुए व्रत को प्रतिसाद देने के लिए कृष्ण भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और कृष्ण भगवान बड़े चतुर हैं, वो केवल 4 सखाओं को लेकर वहाँ जाते हैं और वो वे कैसे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं केवल टॉडलर्स, दैट मीन्स वो ऐसे रेंगते हुए होते ना, वो कभी खड़े होते कभी गिर जाते कभी ऐसे, इतने छोटे। और वो कहते हैं कि भगवान के मन बुद्धि चित्त और अहंकार के अवतार थे वो 4 गोप और वो गोपों को लेकर वो दाम वसुदाम सुदाम और श्रीदाम, चार थे और वो इतने छोटे थे कि उनको पुरुष और स्त्री का सब फर्क भी मालूम नहीं था, ऐसे गोपों को वो जानबूझकर लेके गए। तो वो जाते ही सब लोग हंसते हंसते जा रहे थे, तो भगवान ने कहा अभी यहाँ पर आपको शोर नहीं मचाना है, चुपचाप रहना, देखो मैं क्या करता हूँ। भगवान जाते हैं, सभी गोपियों का वस्त्र वहाँ पड़ा रहता है, तो झुककर सारे वस्त्र उठा लेते हैं और पेड़ पर जाके चढ़ जाते हैं और पेड़ पर ये 4 बालक भी चढ़ जाते हैं और वहाँ बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसे ही इनकी हंसने की आवाज़ आती है तो गोपियाँ सतर्क हो जाती हैं, देखते हैं अरे यहाँ पर कोई आया है, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? बड़े पेड़ के अंदर से, घने पेड़ के अंदर से आवाज़ आ रही है, कदम के पेड़ के अंदर से, जो यमुना किनारे में स्थित है। तो जोर जोर से हंसने लगते हैं, देखो आप तो निर्वस्त्र है। तो वो वहाँ से संवाद शुरू होता है कि क्यों आप निकाल रहे हैं हमारे वस्त्र? बोले आपके वस्त्र मिक्स हो जाएंगे, इतने सारे वस्त्र पड़े हैं। तो मैंने उसको अलग अलग छांट के रखे हैं, और जिस चीज़ का वस्त्र है वो लेने को आ जाओ, फिर मैं आपको दूंगा। एनीवे, बड़ी विस्तार पूर्वक कथा है। तो ठंड बढ़ रही थी, गोपियों को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से कांपने लगी थी, उनको जल्दी बाहर निकलना था, कष्ट हो रहा था। तो कृष्ण से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आप कौन से घर से, आपको कोई संस्कार वगैरह है कि नहीं? आप तुरंत हमारे वस्त्र लौटा दीजिए, तो हम तुरंत नंद बाबा से कंप्लेंट करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि नंद बाबा बड़े बुढ़े हैं, कंप्लेंट करके क्या करेंगे मुझे वो? नहीं नहीं, हम कंस से कंप्लेंट करेंगे आपसे, राजा से कंप्लेंट करेंगे। बोले मैं कंस से तो मैं कतई तौर पर डरता नहीं हूँ, एक भी कण मुझे डर नहीं उसके प्रति। आपको जो कर रहे हैं आप कर सकते, क्योंकि वो कृष्ण का जो निश्चय है उसकी परीक्षा कर रहे थे, कितना निश्चय है, देगा कि नहीं देगा। मालूम पड़ा कि नहीं देंगे तो वो बाहर आई, बड़ा संकोच हुआ उनको। तो उन्होंने कहा कि आपने नदी में निर्वस्त्र प्रवेश करके वरुण देव का अपमान किया है, आपका सारा व्रत जो है वो शून्य हो सकता है, जिस व्रत के लिए आपने यहाँ पर तपस्या की है सारा शून्य हो सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, आचार्य भी लिखते हैं कि गोपियों को वरुण देव की जरा भी परवाह नहीं थी, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट वरुण देव। जो कृष्ण कह रहे हैं उसी शब्द पर उनको सम्मान करने की प्रवृत्ति थी उनकी। तो उनको वरुण देव के शाप और उनके फल न देना, इसकी कोई परवाह नहीं थी उनको। तो कृष्ण ने कहा कि आपको दोनों हाथ उठाकर सर के ऊपर धारण करके ऐसे वंदन करते हुए बाहर निकलना है, तब आपका ये पाप जो है वरुण देव का, अपराध का, वो नष्ट हो जाएगा। तो वो बाहर निकल कर आई और भगवान ने सब गोपियों को उनका वस्त्र वापस दिया। तो लोग बड़ी टीका करते हैं इसके ऊपर कि कैसे भगवान ने तुम्हारे, तो ये जो मतितार्थ है इस कथा का, बड़े विस्तार में कथा है, उसको यहाँ पर नहीं बोलेंगे, समय बहुत कम है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गोपियों ने कौन से वस्त्र उतारे थे। ये हमारे ऊपर बहुत सारे वस्त्र होते हैं, जैसे गोपियाँ जब बीच रात में भगवान को मिलने गई थी, अब भगवान ने कहा क्यों आए हो आप यहाँ पर, आपको जाना चाहिए, आप तो माता है किसी की, आपकी पत्नी है किसी की, किसी की बहू है आप, किसी कितने आपके कर्तव्य है, आप तो छोड़कर बीच में आएंगे कैसे, आपका कर चरित्र है ये। तो उन्होंने कहा भगवान को कि ये जो सारे वस्त्र हैं जिनका वर्णन आप कर रहे हैं, हमारा माता होना, हमारा बहू होना, हमारे कन्या होना, हमारा पत्नी होना, और हमारा ये होना, हमारा वो होना, ये सारे वस्त्र हैं, ये सारे वस्त्रों को बहुत दूर उतार कर हम आए हैं अभी। सब हमारे आत्मा पर ये जो वस्त्र हैं, जो हम समझते हैं कि हम है, ये सारे वस्त्र उतार कर हम अभी आए हैं। अभी आप दोबारा हम आपको, आप हमको कह रहे हैं कि उसको दोबारा पहने, आप हमको उनकी याद दिला रहे हैं कि आप दोबारा उस वस्त्रों को पहनो, मतलब दोबारा याद करो कि आप माता हो, दोबारा याद करो कि आप पत्नी हो, और आप बालक हो, और किसी की कन्या हो। हम नहीं ये वस्त्र को पहनना चाहते, हम उन वस्त्रों को छोड़ चुके हैं जो आप और हमारे बीच में एक दरार है, आप और हमारे बीच में हमारे मिलन के लिए ये सारी दरारें हम छोड़ चुके हैं। तो भगवान समझ गए, वो गोपियों की परीक्षा कर रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर भी उनको संकोच हो रहा है। सबसे बड़ी बात स्त्री के लिए संकोच होती है, लज्जा, शील, ये स्त्री के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और वो शील केवल पति के सामने प्रकट हो सकता है, केवल उनके लिए होता है। तो ऐसे सारे वस्त्रों को उन्होंने उतार दिया था, लाक्षणिक रूप से सारे वस्त्रों को उतार दिया था, और शुद्ध और प्रेमपूर्ण अवस्था में, जो जीव की परिपूर्ण अवस्था है, प्रेम के द्वारा संपृक्त, सैचुरेटेड विथ लव, इस अवस्था में वो भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी। क्योंकि वो जानती थी हमारे प्रियतम हैं, उनकी मीठी मीठी चिढ़ाती हुई बातें जो कर रहे थे उनको बड़ा आह्लाद हो रहा था, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। तो ये जो लीला है, अगर हमारे मन में अगर काम वासना है, हमारे मन में अगर अहंकार है और दुनियादारी के प्रति आसक्ति है, तो हम इस लीला को गलत ही समझेंगे। लेकिन अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, पुनीत है, तो हम इस लीलाओं का सार समझ सकते हैं। ये आत्मशुद्धि के बारे में प्रकट की गई लीला है, कि जो आत्मशुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अस्पताल में भी हम अभी आज से सप्ताह शुरू कर रहे हैं, क्लेंजनेस वीक। हाँ, इसका रहस्य क्या है? गोपियाँ उस क्लेंजनेस का जो सार है उसको ग्रहण कर चुकी थी। हर प्रकार का मोह, हर प्रकार का आकर्षण, हर प्रकार की वस्तु को वो भगवान के लिए छोड़ने के लिए तैयार थी, और उन्हें छोड़ भी दिया भगवान के सामने। भगवान ने नाना प्रकार से उनको सम्मोहित किया, प्रयास किया उनको अलग अलग बातें बताने का, फिर भी गोपियाँ वश में नहीं हुई उस बातों की। भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ये गोपियों की अवस्था है। हाँ, ऐसे कहा गया है कि उनको वैसा बहुत संकोच था निकलने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं गोपियाँ? अश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम, अदर्शनम क्या मर्महताम करो तु वा यथा तथा वा विदधा तु लंपटो। आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, आप हमारी बेइज्जती कीजिए, हमारा अपमान कीजिए, हमारे दिल को ठुकरा दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए उसको, या हमें गले लगाइए, अपना बना लीजिए, सेवा दीजिए, दूर कर दीजिए हमको, पास बुलाओ, दूर भगाओ, जो मन में आया आप कर सकते हो। लेकिन एक बार हमें आपको अर्पण करना है अपने अस्तित्व को, और आप हमारे आराध्य प्राणेश्वर हमेशा बने रहेंगे। चाहे आप हमसे कैसा भी व्यवहार करना चाहेंगे, आपकी इच्छा के अनुसार वो हम स्वीकार करेंगे। तो जो व्यवहार उस समय भगवान उनसे कर रहे थे वो एक दृष्टि से उनके लिए बहुत कठिन था एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन चूंकि भगवान की तरफ से वो इच्छा प्रकट हो रही थी इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो ये जो लीला है ये एक शरणागति का एक चरम उदाहरण है, कोई ऐसे हंसी मजाक हास्य परिहास का लीला नहीं है, एक शरणागति का एक चरम उदाहरण है ये, कि गोपियाँ कैसे, कितने प्रकार की गोपियाँ थी, हर प्रकार की गोपियाँ इसी भाव में ब्रज में आई थी। हालांकि उनका भाव सेवा करने का अलग अलग था, लेकिन ये भाव स्थायी भाव था उनका, इट्स अ बेसिक एटीट्यूड दे हैड, और इसकी वजह से उनको कृष्ण भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और वो अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त की। उन्होंने ये जब लीला हुई और वस्त्र प्राप्त किए बाहर आकर हाथों को ऊपर उठाकर, भगवान ने उनको कहा कि दो ही दिन में मैं आपको वृंदावन के वनों में मिलूंगा और रास में सम्मिलित कर लूंगा। तो गर्ग मुनि जी बताते हैं कि दो दिन के पश्चात इन मिथिला रूपा गोपियों के साथ में भगवान ने रास लीला किया, और एक कदम उनको स्वीकार करने में भगवान ने प्रकट किया, क्योंकि तो रासलीला भगवान का प्रेम का प्रकटीकरण है, कोई सेक्स डिजायर नहीं है उसके अंदर। जीव के प्रति सबसे परमोच्च आनंद प्रकट करने का वो एक मार्ग है भगवान का, गौलोक में भी और यहाँ पर भी। तो उनकी ये शरणागति भावना को देखकर भगवान ने तुरंत उनको दो दिन के अंदर रासलीला का प्रेम प्रदान किया, और गोपियों के जीवन की परिपूर्णता उनको बहाल गई उन्होंने। तो हमको भी देखना है कि ये सब जो लीलाएं हम सुनते हैं सुनना भी चाहिए, अगर हमारा भाव सही है तो ये लीला का श्रवण ही हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। अगर हमारा भाव सेवा भावी है, अगर हम पर भगवान हमारे अंदर भगवान के लिए श्रद्धा है, सुखदेव जी ये कथा कह रहे हैं उन पर हमको श्रद्धा है, तो ये लीलाएं हमारे हृदय को शुद्ध करेंगी, सारी काम वासनाओं को नष्ट कर देगी। और अगर हमारे मन में कोई ऐसा हेतु है या कोई दोष है, हमारे मन में कोई भौतिक लालसा है और भगवान पर उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो यही लीला हमारे मन में काम वासनाओं को जागृत करेगी, को उद्दीपित करेगी। हाँ, इसलिए दशम स्कंद का वर्णन जो है वो सभी लोगों के सामने विस्तार रूप में नहीं करते, एक करुणा के रूप में, ऐसा नहीं कि अरे ये तो ऑडियंस क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं, इन जीवों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई पहली स्टूडेंट स्कूल में अगर कोई जा रहा है पहली कक्षा में, तो उसको हम 20 किलो का वजन नहीं देंगे हाथ में, जाओ भाई स्कूल लेके जाओ। आजकल के स्कूल में होता है 20 किलो का पैकेट उनके पीछे, लेकिन माता उनको ऐसा कष्ट देती नहीं, क्योंकि जो छोटा बालक है उसको जो भी मुमकिन है उतना ही कर सकते हैं। उसी तरह से नौसिखिया भक्त के सामने ऐसा वर्णन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो उसके हृदय में काम वासना भरी हुई है वो ऐसे आग की तरह ज्वालामुखी की तरह भड़क न जाए, इसलिए वो उसको नहीं बताते। लेकिन जैसे पात्र हो जाता है व्यक्ति और उसकी भावना सही हो जाती है, उनकी चेतना उनका भाव सही दिशा में आता है, तो इन लीलाओं का रहस्य हम समझ सकते हैं। और आज की स्थिति में हमारी जो पतित अवस्था है उसमें हम समझ सकते हैं कि हमें हृदय की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। और हृदय की शुद्धि का सार जो है चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन लीला में प्रकट किया। एक तरह से गुंडीचा मार्जन लीला और चिरहरण लीला में कोई अंतर नहीं है। चिरहरण लीला में ऐसे पात्र खड़े हैं जो अपने हृदय की शुद्धि करके पूर्णतः भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और गुंडीचा मार्जन लीला में भी ऐसे भक्त हैं जो महाप्रभु चैतन्य के आदेश के अनुसार मंदिर को साफ कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं उनको कि ये मंदिर का मार्जन आपके हृदय का मार्जन है। हृदय के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो विकारों से हम ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, ये सारे विकार जो है ये भगवान के नाम के जप एवं कीर्तन से पूर्णतः नष्ट हो सकते हैं। मन निर्मल और पवित्र हो सकता है। जिस पवित्र निर्मल मन में भगवान के सारी जो गौरव है वो प्रकट हो सकते हैं। हृदय का स्थावी भाव जो है भगवान के प्रेम का वो प्रकट हो सकता है। इसलिए हम इस अस्पताल के अंदर भी स्वच्छता का सप्ताह जो है वो रखते हैं, इसी भाव से कि केवल बाहर का परिसर नहीं जिसमें हम रहते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, आत्मा, इनको भी स्वच्छ करना है। आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर और शरीर के आसपास की जो वस्तुएं, परिसर, एटमॉस्फेयर, वातावरण, इन सबको शुद्ध करना है। और आत्मा की शुद्धि भगवान के कथाओं का श्रवण से होती है। आत्मा की शुद्धि भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन करने से होती है। आत्मा की शुद्धि भगवान की सेवा में अपने आप को लगाने से होती है। बुद्धि का शुद्धि जो है, महात्मा गांधी कहते थे कि जो सुबह उठकर मैं श्रीमद् भगवद गीता का पठन करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कल परसों डॉक्टर अब्दुल कलाम आए थे, वो सुबह उठकर रोज भगवद गीता और कुरान, होली कुरान का पठन करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसे करने से बुद्धि का स्नान होता है, बुद्धि गेट्स क्लेंस्ड, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और मन के तीन प्रकार है, तीन कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। जब सोचना और महसूस करना और इच्छा करना ये हम भगवान के लिए करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनको अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे नाम जप के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, संपर्क करने से, या उनके लिए ही डिजायर करेंगे। जैसे गोपियां यहाँ पर भगवान की ही इच्छा कर रहे हैं, अलग रूप में कर रहे हैं, वो पति के रूप में कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही उनका केंद्र स्थान है। तो भगवान के बारे में इच्छा करना, भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में अनुभूति करने का प्रयास करना, उनको फील करना, ये मन की शुद्धि का मार्ग है। और रोज नियमित रूप से स्नान करना, ब्राह्मणों को 3 बार स्नान करना, ये शरीर की शुद्धि का मार्ग है। अवैध भोजन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये मन, आत्मा, शरीर सबके लिए शुद्धि का मार्ग है। और जब व्रत होता है तो हविष्यान्न खाते हैं, तो हमारा शरीर और मन व्रत के लिए तैयार हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है तो आपको बाहर अस्वच्छ वातावरण पसंद नहीं आएगा, आप तुरंत बाहर का वातावरण शुद्ध करने लगोगे। जब कोई शराब है, आदमी गटर में गिरा हुआ है, तो उसको लगता है बहुत स्वर्ग में गिरा हूँ मैं लेकिन जब उसकी नशा उतरती है तो देखता है अरे सारा शरीर गंदा हो गया है, तो फिर घर में जाके स्नान करता है, और स्नान करने के बाद उसको बोलेंगे जा भाई उस गटर में सो जा जो वहाँ तू कल सो गया था, वो नहीं सोएगा क्योंकि अब वो स्नान कर चुका है। रंगीली होली के समय हम जब रंग खेलते हैं, दिन भर रंग लगाते रहते हैं हमारे ऊपर, हम खेलते रहते हैं, लेकिन एक बार हमने होली का खेल समाप्त किया, घर जाके वस्त्र बदले कर या स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर बाहर आए, और कोई आदमी आया रंग लेकर, तो हम लोग वही नहीं, अभी नहीं मरना है, हो गया अपना भी काम। तो जब स्वच्छ हो जाते हैं हम, तो हमें अस्वच्छता पसंद नहीं आती। इसलिए अगर हमको ये सप्ताह को यशस्वी करना है तो पहले हृदय को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, तो अपने आप ही आपको सब गंदगियाँ नजर आएंगी अपने आसपास क्या है। जब मन के अंदर गंदगी होती है तो आसपास की गंदगी नज़र नहीं आती है, उसमें पड़े रहते हैं हम लोग। और आप करके देखिए, अगर आपके आसपास का गंदगी आप हटा देंगे तुरंत आपको फ्रेश लगेगा एकदम। इसलिए इस सप्ताह को हम केवल ऐसे, अरे 7 दिन अभी ड्रॉवर खोलना है, अरे अभी ये करना है, अरे अभी तो ऊपर जाना है, पंखे के ऊपर धूल साफ करना है, इतना बोरिंग काम है, क्यों रखा है सप्ताह ऐसा नहीं सोचना है आपको। ये बाहरी शुद्धिकरण करने से अंतर की शुद्धि होती है, और अंदर की शुद्धि होने से बाहर की शुद्धि अपने आप होने लगती है। ये कंटिन्यू साइकिल है, इट्स अ कनेक्टेड साइकिल। एक करने से दूसरा, दूसरा करने से तीसरा। जैसे राधा रानी कृष्ण को देखती है तो वो राधा रानी का सौंदर्य आनंद से बढ़ता है, और उस आनंद के बढ़ते हुए सौंदर्य को देखकर कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है, और जब वो कृष्ण सौंदर्य बढ़ते हुए राधा रानी देखती है तो उनका सौंदर्य बढ़ता है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इस तरह से राधा और कृष्ण का सौंदर्य अपरिमित मात्रा से हमेशा वृद्धिंगत होते रहता है। उसी तरह से मन शुद्ध है तो परिसर शुद्ध है, परिसर शुद्ध है तो मन शुद्ध हो जाता है, और ये प्रयास हमको करना है, तब जाकर चिरहरण लीला का जो रहस्य है वो हम समझ सकते हैं। क्यों गोपियों को भगवान ने ऐसे एकांत में जाकर दर्शन दिया? क्योंकि गोपियाँ इस स्वच्छता अभियान में सफल हो चुकी थी, मन बुद्धि अहंकार इस सारे स्तर के स्वच्छता अभियान में वो सफल हो चुकी थी, और स्वच्छता के, पवित्रता के, पुनीतता के चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसमें प्रेम का प्रकट होता है। स्वच्छता ऐसी एक शक्ति है कि जो हृदय से प्रेम भी प्रकट करती है भगवान के लिए। इसलिए आप लोगों को विनती है कि इन लीलाओं को पढ़ने के समय भगवान का जप कीजिए, शुद्ध आचरण रखिए, शुद्ध भाव रखिए, तब सुखदेव जी का वचन अनेकों अनंत मात्राओं में से हमारे हृदय में प्रकट होगा, एक शुद्ध अनुभूति लेकर जो हमारे हृदय में प्रेम की ज्योति को जलाएगा। हाँ, उस अनुभूति के द्वारा क्या होता है, प्रेम की ज्योति जलती है, और अगर जल रही है तो उसको प्रेम का घी प्राप्त होता है, जिससे और वो अधिक प्रज्वलित होती है। इसलिए आप लोगों को विनती है कि गुंडीचा मार्जन का उत्सव 9 तारीख को आ रहा है, उसके पहले ही सप्ताह हम मना रहे हैं, इसका बड़ा रहस्य जो है वो समझने का प्रयास कीजिए। इसके द्वारा हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर शुद्ध हो सकता है, और भगवान को अर्पण करने लायक हम बन सकते हैं। वी विल बिकम ऑफरेबल टू द लॉर्ड, लॉर्ड विल एक्सेप्ट अस। वो हमको स्वीकार करने के लिए बड़े उत्सुक हैं, लेकिन हम अशुद्ध हैं इसलिए वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब हम ये अभिलाषा भी करते हैं कि हमें शुद्ध होना है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि एटलीस्ट दिस सोल इज डिजायरिंग टू बिकम प्योर, टू प्लीज मी। तो हमें ये अभिलाषा करनी है कि हमें भगवान के लिए समर्पित होने के लिए योग्य बनना है, और वो हमें स्वीकार करें, इस भावना से हमको इस सप्ताह को अपने आप को प्रस्तुत करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यमुना देवी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण भगवान की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है, कोई टीका है, टिप्पणी? माफ़ी चाहता हूँ, श्यामानंद प्रभु के जैसा प्रवचन मैं नहीं कर पाया, लेकिन प्रयास मैंने ज़रूर किया है। और कोई किसी का प्रश्न है, आदिकेश्वर प्रभु, कोई टिप्पणी, कमेंट्स? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।